ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
கே ராஸ்தா இத்தனை சோட்டா ஹை அமர்நாத் நீ வைஷ்ணவி தேவி ஜா குஃபா மே ஜாத்தே தோ அந்த குஸ் கர் ஜாத்தே அர்த்தகன் அர்த்தகுமாரி ஜாக்கர் அந்த குஸ்தே तो जाने के लिए रास्ता अंत में ही चाहिए. इसी प्रकार इसको प्राप्त करने के लिए सारे इच्छा का त्याग विषय चिंतन छोड़ने पर ही आत्मतत्व प्रकट हो जाता है, क्योंकि आत्मतत्व बुद्धि में स्थित है. अशरीरं शरीरे स्वनवस्ते स्वस्थितं महांतं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति. शरीर रहित अशरीरम और शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम. ये शरीर अनवस्थित है, अनित्य है. अनित्य शरीर में अशरीर होकर के स्थित है. शरीर के अंदर बाहर भी है. अनित्य शरीर बहुत है. अनवस्थेशु शरीरेशु शरीर बहुत है, बहुवचन है. आत्मतत्व एक वचन अशरीरम अवस्थितम. शरीरेशु अनवस्थेशु अनवस्थित बहुत शरीर में, बहुत शरीर में आत्मतत्व कितने है? एक आत्मतत्व देखो शरीरेशु बहुवचन है. सबके शरीर में आत्मा आत्मा अलग अलग है तो क्या कहना चाहिए? शरीरेषु अनवस्थेषु अशरीराणि अनवस्थितानि आत्मतत्वानि ऐसे कहना चाहिए. आत्मतत्व एक ही, शरीर अनवस्थित है, आत्मतत्व अवस्थित समान रूप से. शरीर की उत्पत्ति नाश से आत्मतत्व की उत्पत्ति नहीं, नाश नहीं. शरीर के गमन से आत्मतत्व का गमन भी नहीं. जैसे आकाश घट बन गया तो आकाश घटाकाश कहेंगे, घट तोड़ देंगे तो घटाकाश नहीं होगा, किन्तु आकाश जहां का वहां रहेगा. घटों को लेकर जाएगा तो आकाश उसको अंदर जाता है, पीछे पीछे चलता है, जाएगा. इसी प्रकार आत्मतत्व तो न जाता है न आता है, सर्वव्यापक. तो मर जाने पर क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर चला गया, उसमें चिदाभास रहता है, उसको कहते जीव चला गया. शुद्ध आत्मतत्व तो निरंतर अवस्थितम स्थिर है. महांतम विभुम आत्मानम, आत्मा को कहा विभु. आत्मानम विभु महांतम, महान है. विभु व्यापक सर्वत्र स्थित है. पारमार्थिक ब्रह्म आत्मा अभिन्न है. आत्मान मत्वा उसको जान करके धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक को प्राप्त नहीं करता है. यहां भी आत्मग्रहण क्या श्रुति में अपने से अभिन्न बताने के लिए, क्योंकि आत्म शब्द का प्रयोग प्रत्येक आत्मा में मुख्य होता है. ईश्वर को कहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, यहां आत्मा ग्रहण क्या? विभुम आत्मान, आत्मा महान है. विभु अणु कैसे होगा? आत्मा महान विभुए उसको जान करके न सोचती. शोक ज्ञान होने के बाद शोक क्या और प्राप्ति ही नहीं, प्रसंग ही नहीं. नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वे सब ऋणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विरुणुते तनुगुंसाम. आत्मा दुर्विज्ञेत है, फिर उपाय से जाना जाएगा. किन्तु उपाय क्या है? न प्रवचन न लभ्य. प्रवचन का थे वेद अध्ययन करना, ये कथा प्रवचन नहीं है. अयम आत्मा प्रवचन का तो अनेक वेद स्वीकरण, वेद अध्ययन किया, गुरु मुख से उच्चारण अनुच्चारण किया और वेद पढ़ा भी दिया, इससे आत्मा साक्षात्कार नहीं. बड़े साधन है वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि संधि. वेद अध्ययन भी साधन है किन्तु इतने मात्र से नहीं होता है. न मेधया, मेधा ग्रंथ धारण शक्ति, ग्रंथ और ग्रंथ के अर्थ. गीता पूरा कंठस्थ कर लेंगे, प्रत्येक पद का अर्थ भी समझ लेते हैं. छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो बोलते 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 अष्टादश अध्याय कंठस्थ करके सुनाते हैं. बहुत है कंठस्थ कर लेते, जो कर लेते करके रोज पाठ करते हैं, अर्थ भी ज्ञान हो जाएगा. एक एक पद का व्याख्यान भी कर लेंगे. ये सब साधन है किन्तु इतने मात्र से साक्षात्कार नहीं होता. न बहु ना श्रुते, केवल श्रवण ही करे और मनन नहीं करे. श्रवण बहुत कर लिया, मनन निधिध्यासन बहुत श्रवण तो कर लेते हैं, मनन नहीं कर पाते. श्रवण जीवन भर करते रहते, मनन नहीं कर पाते. अरे मनन क्या पता भी नहीं. कहीं कहीं तो गुरु लोग कहते तर्क पढ़ने के लिए निषेध करते हैं. स्वयं तर्क नहीं पढ़े, कोई शिष्य तर्क पढ़ेगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा. मना करते तर्क नहीं पढ़ो. तर्क थोड़ा नहीं पढ़ेगा तो मनन कैसे करेगा? तर्क थोड़ा आवश्यक है. श्रुति मतो तर्को अनुसंधियाताम दुष्तर्का सुविरम्यताम. दुस्तर्क दुष्ट तर्क से विरत हो जाओ, श्रुति सम्मत तर्क अनुसंधान करो। तर्क में दोष क्या है, गुण क्या है, भी समझना पड़ेगा। दुस्तर्का सुविरम्यता भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दुस्तर्क कैसे पता चला ये तर्क दुस्तर्क है? सामान्य तर्क जो नहीं जानता है ऐसे तर्क करेगा, क्यों समुद्र पानी नमक, क्यों पानी तो है, गंगा जल तो नमक नहीं, समुद्र पानी क्यों नमक होगा, बड़ी जोर से डांट कर कोई कहेगा। ये तर्क नहीं है, तर्क में कुछ दोष गुण है, जो जानते हैं उसको तर्क करने के लिए भी कुछ ज्ञान चाहिए, संशय प्रश्न करने के लिए कुछ समझदारी चाहिए। तो कोई कहेगा वन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत्, वन्नी ठंडी है क्योंकि द्रव्य, जैसे जल जल ठंडा है ना, नहीं द्रव्य तो वन्नी भी द्रव्य, इसलिए बिल्कुल ठंडी है। अनुमान करेगा, अनुमान कर से क्या होगा, अनुमान कर से फिर जो जानता है अनुमान दोष बताएगा। दोष क्या है, बनी पकड़ा दो, हम जल पकड़ते तो हाथ में बनी पकड़ लो, बिल्कुल ठंडा है, देखो हम देखो जल पकड़ते ठंडा है, तुम लोग हाथ में बनी पकड़ लो ठंडा है, पकड़ लिया तो फिर कहेगा वन्नी अनुष्ण। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, अनुमान से नहीं होगा। तो इसलिए तर्क करने के लिए भी कुछ चाहिए, मनन करना पड़ता है, श्रवण करने के बाद मनन करके तर्क से निश्चय होगा तभी निधि ध्यान होता है। अगर मनन नहीं कर पाएंगे तो निधि ध्यान कहा होगा, रटते सोहम शिवम अहम ब्रह्मास्मि, रटता रहेगा, रटने पर नहीं होता है, निधि ध्यान अलग है। मनन से संशय निवृत्त हो जाएगा, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर थे चेतस स्थापित यत एकतानत्वमेतद्धि निधि ध्यान मुच्यते। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदश में पहले प्रकरण में कहा, श्रवण मनन दोनों करने पर प्रमाण संशय प्रमेय संशय दोनों की निवृत्ति हो जाए। श्रवण करने से शास्त्र प्रमाण श्रुति तात्पर्य निर्णय होता है, संशय निवृत्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्र अद्वैत कहता है अथवा द्वैत कहता है, ज्ञान का उपदेश करता है कर्म करने के लिए अथवा भक्ति कहता है, इसमें संशय है, श्रवण करने पर यह संशय निवृत्त हो जाएगा। किंतु जीव ब्रह्म की एकता श्रुति कहती तो एकता कैसे होगा, ब्रह्म अद्वितीय कैसे, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, कैसे होगा, ये संशय निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ेगा। मनन से प्रमेय संशय नष्ट हो जाए तब निसंदिग्ध अर्थ में चित्त स्थिर हो जाएगा, इसको लगातार चलाए तब निधिध्यासन। निधिध्यासन के पहले मनन की आवश्यकता है, इसलिए केवल श्रवण से नहीं, बहुना श्रुते नहीं, केवल श्रवण से नहीं, श्रवण के बाद मनन करना है, उसका निधिध्यासन भी करना है। यम एवे सभृणुते ते न लभ्य, जिसको ये वर्ण करता है साधक, आत्मा का ही वर्ण करता है, अहम अस्मि करके तेन, उसी आत्मा से ही आत्म प्राप्त होता है। यहां लक्षणा करके यहां कहीं परमात्मा अनुग्रह ये भी कहा गया, स्वयं आत्मा से परमात्मा अनुग्रह से प्राप्त होता है, साधन करता है अहम अस्मि ब्रह्म, लगातार ब्रह्म कार्य वृत्ति करते करते उससे प्राप्त होता है। तस्य आत्मा निष्काम होकर के आत्मा की चिंतन करता है तो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, तस्य आत्मा विभुर उन्नति तनुष्याम, आत्मा ही उसके अपने तनु का था शरीर स्वरूप, अपने स्वरूप वास्तव स्वरूप को ही प्रकट कर लाता है। जब विषय चिंतन वासना सब है वो ढका गया जैसे, जब सब छोड़कर उसकी प्रार्थना करता है और कुछ नहीं चाहिए, निरंतर उसका चिंतन करता है, तब मैला हट जाता है, तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को आत्मा स्वयं प्रकट कर लेता है, प्रकट हो जाता है। किंतु उसको प्राप्त करने के लिए जितने दुर्गुण दुश्चरित उसको छोड़ना पड़ेगा, आगे श्रुति सावधान स्पष्ट कर देती है, ना विरतो दुश्चरिता ना अशांतो ना समाहित ना अशांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात। जितने साधन करे दुश्चरिता तो अविरत, दुश्चरित दुराचार से जो विरत नहीं हुआ, प्रतिषिद्ध कर्म से विरत नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं कर सकता है। दुश्चरिता श्रुति स्मृति विहित निषिद्ध, श्रुति स्मृति के विहित नहीं, पाप कर्म से जो अविरत नहीं अनुपरत नहीं हुआ, वह आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। ना शांत इंद्रिय चांचल्य है, इंद्रिय चांचल्य से उपरत भी होना चाहिए, अशांत मंत्र इंद्रिय चांचल्य से अशांत नहीं हुआ तो भी प्राप्त नहीं कर सकता है। न असमाहित, जो समाहित समाहित होते एकाग्र मन होना चाहिए, एकाग्र मन समाहित एक सम्यक आहित स्थिर मन एक में तत्व में लगे, ऐसा नहीं होगा। विक्षिप्त चित्त जिसका है, जितने श्रवण करने पर भी प्रज्ञान इनम न प्राप्त नहीं कर सकता है। समाहित चित्त होने पर भी यदि समाहित का फल कर्म फल सिद्धि आदि इच्छा करता है तो आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कोई कोई सोते हमको थोड़ा चमत्कार मिल जाए, साधन करते हैं सोते किसी प्रकार थोड़ा चमत्कार आ जाए, किसी दूसरे मन को जान ले, इसलिए अलग साधन करते हैं, तंत्र साधन करते हैं, इधर और भटकते हैं, कोई कोई हमको बता दे, किसी मन को जान ले तो मोक्ष हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति दर्शन हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ किंतु संसार में प्रसिद्धि ख्याति मिल जाएगी, धन सम्पत्ति मिल जाए। जिसको इधर जाने की चाहे, ख्याति प्राप्त करे, धन सम्पत्ति प्राप्त करे, तो परमात्मा प्राप्त करेगा और नरक के रास्ता को साफ करता है। सिद्धि के बीच सिद्धि का कथन योग दर्शन में है, प्राप्ति के लिए नहीं, वो प्रतिबंधक है अध्यात्म मार्ग, उसे समाधान होने के सावधान रहने के लिए। सिद्धि है करने पर सिद्धि की प्राप्ति होती है, सिद्धि मिल गया तो कोई साधन में उत्कर्ष हो गया ऐसा नहीं। इसलिए किसी के पास यदि कोई सिद्धि चमत्कार है वहां महत्व बुद्धि नहीं करना चाहिए, कुछ साधन में उत्कर्ष उसके पास आ गया ऐसा कभी नहीं समझना, ये उत्कर्ष नहीं है। वो उसमें महत्व बुद्धि करे तो स्वयं उसमें फल जाएगा चमत्कार के पीछे, चमत्कार कोई सिद्धि ये साधने में उत्कर्ष नहीं। कोई ज्ञानी व्यासादि थे अनुग्रह करके कुछ कर देते वो अलग है, वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं करेंगे। जहां चमत्कार आदि है वो चमत्कारी है, आत्मज्ञान से दूर है, आत्मज्ञान का फल नहीं, साक्षात्कार हो गया तो जो चाहेगा वो कर देगा, जो कोई मन में सोता है बता देगा। ये ब्रह्म ज्ञान के साथ इसका कोई संबंध नहीं, ब्रह्म ज्ञान होने पर एक अद्वितीय ब्रह्म, उसे बिना कुछ भी नहीं, कुछ चिंतनीय नहीं, कुछ जानने का नहीं, कुछ छोड़ने का ग्रहण का नहीं, अपने मन भी नहीं, अपने मन का भी छोड़ देता है, मन में कुछ नहीं, आत्मस्वरूप से रहता है। और दूसरे व्यक्ति को देखना, उसके मन को जाना, उसके मन को बताना, बता करके ये व्यवहार करना, ये आत्मज्ञान का नहीं है। इसलिए कहीं कहीं बहुत लोग भ्रांत हो जाते हैं, कहीं चमत्कार देकर उसके पीछे भागते हैं, फिर अपना जो लक्ष्य उसको छोड़ देते हैं। इसलिए जो समाहित हो जाने के बाद भी अशांत मानस, अशांत मानस का अर्थ क्या है भाष्य में, यदि समाधि फल चाहता है, मन शांत नहीं हुआ, चित्त व्यापृत, इसके फल चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। किसी प्रकार कुछ फल चाहता है तो ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। दुश्चरित्र से विरत हो जाए, इंद्रिय चांचल्य रहित हो जाए, चित्त समाहित तो हो जाए और समाधि फल को भी इच्छा नहीं करे, तब जिसका आचार्य व आचार्यवान पुरुष वेद, तब प्रज्ञान एनम अपने आत, तब प्रज्ञान से इसको ज्ञान से प्राप्त करता है, ज्ञान से प्राप्त होगा, ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं है, ज्ञान से प्राप्ति, ज्ञान से प्राप्ति क्या, ज्ञान से आवरण की निवृत्ति हो जाती, अज्ञान आवरण हट गया, नित्य प्राप्त है आत्म तत्व, प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्ति का भ्रम वो नष्ट हो जाता है। यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवत ओदन मृत्यु यस्य उपसेचनम क इथा वेद यत्र स आत्म तत्व है, ये सारे धर्म का आश्रय है। ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवत ओदन, ब्राह्मण क्षत्रिय जाति उसके भात के समान, खाद्य के समान, आत्मतत्व इसी प्रकार है। सारे पदार्थ प्रपंच माया से उत्पन्न हुआ, माया से मिलन हुआ, सबको समाप्त कर देता है, और आत्मा की शक्ति अनिर्वचनीय है माया। जब तो ज्ञान नहीं हुआ तो शक्ति शक्ति कहते, माया कहते, ज्ञान हो जाने के बाद दिखता है माया नाम को कोई पदार्थ नहीं, ना पहले सृष्टि नहीं थी, तीनों काल में जगत नहीं, ऐसा। मृत्यु से उपसेचन यमराज कहते हैं, मृत्यु यमराज उसके उपसेचन, भात खाएंगे तो उसमें थोड़ा मठा अथवा दाल अथवा सब्जी चटनी मिलाकर खाते, चटनी के जैसे ये भात में थोड़ा कुछ मिलाकर खाते हैं, वो रसम बनाते हैं दक्षिण में, थोड़ा मठा डाल देते हैं, थोड़ा दाल पानी डाल दिया, थोड़ा गिला करके, अथवा कोई चटनी थोड़ा, उसके चटनी के जैसे खाद्य के लिए बराबर नहीं, चटनी खाकर कोई पेट भरता है क्या? इसी प्रकार यमराज उसके ऊपर से चटनी के बराबर हो गया। कोई था वेद, इसको आत्मतत्व कौन जान सकता है, इस आत्मतत्व जो यमराज भी भोजन के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, सबको समाप्त कर देता है, इसी प्रकार आत्मतत्व कौन जानता है, ये आत्मा जहां कहा है। अर्थात इतने सावधान होने पर ही ज्ञान होगा। बिल्कुल बाह्य विषय नहीं चाहिए, जो हो गया पर्याप्त हो गया और नहीं चाहिए, ये दृढ़ निश्चय करके और कुछ नहीं चाहिए, इधर मन आत्म तत्व में लगाना है। दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़े तो प्राप्त होगा, और उसको मिथ्या समझ कर उसको ही पकड़ते रहे आगे नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति गंगा जी के ऋषिकेश में आया बहुत दूर से, वहां इसे गोल गोल पत्थर दे करके देखा, बड़ा सुंदर दिखता है ये गोल गोल पत्थर, सालग्राम जैसे दिखता है, शिवलिंग जैसे दिखता है, बड़ा सुंदर सुंदर पत्थर पहले देखा, उसको सो इकट्ठी करा, इतने हो गया चल नहीं पाया, फिर सो छोड़ कर गया। कितने लेकर जाएगा, गोल गोल पत्थर है ना, इसे कहीं ऊपर जाते हैं तो सालग्राम जैसे गोल, कहीं तो सालग्राम जैसे, कहीं शिवलिंग जैसे बड़े सुंदर पत्थर मिलते हैं, और उसको रखता है तो कितने लगे, इतने जो हो जाएगा फिर ले सकता है। ये सब ज्यादा उठाने पर आगे नहीं जा सकते हैं, इसको छोड़ो, आगे चलना है तो छोटे वजन भी नहीं चले सकता है, वजन कम कर चलना है। इसे ये वजन इकट्ठे नहीं करो, परमार्थ मार्ग में चलना है, आत्म तत्व तो प्राप्त करना है, सांसारिक वस्तु मिथ्या वस्तु उसके पीछे भाग उसको इकट्ठी करे तो आगे कहां जाना है। द्वितीय बोली समाप्त होने पर अभी तृतीय बोली है। ऋतम पिबंत सुकृत लोके गृह प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। ऋत का तो सत्य है, किंतु यहाँ कर्मफल को ऋत कहा। कर्मफल ऋत सत्य क्यों है, कर्म ऐसा है उसका फल अवश्य देता है, अवश्य मावी नाभूतम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सतीरपि अवश्यमेव भूतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म अवश्य फल देगा, कोई कर्म करता है छिपा करके, पाप कर्म करता है, झूठ बोलता है, गलत कर्म करता है, अपने को बुद्धिमान मानता है, वो कर्म रहेगा कभी फल देगा। बुद्धिमत्ता नहीं है दुष्कर्म करना। पुण्य पाप कर्म करता है, पुण्य करता है तो व्यर्थ नहीं होता है, कोई सत्कर्म किया, सत्संग किया, पुण्य कर्म किया, भजन किया, कोई कहता मैं इतने किया तो मुझे क्या मिला, दूसरे व्यक्ति तो कुछ नहीं करता बड़ी सुख में बैठा, मैं इतने पुण्य कर्म करता हूं, पूजा करता हूं, दान करता हूं, हमको इतने कष्ट होगा, ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। अभी जो कर्म कर रहा है उसका फल अभी भोग नहीं रहा है, अभी जो कोई भोग रहा है पहले पर कर्म किया था उसी कर्म फल भोग रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति पहले पुण्य कर्म था किया था, प्रारब्ध में पुण्य कर्म लेकर आया, अभी पाप कर्म करता है, जो पुण्य कर्म किया था पुण्य कर्म का फल भोग करेगा नहीं करेगा, पूरा भोग करेगा। अभी जो पाप करने पर भी उसको दुख नहीं मिला, कोई पाप कर्म लेकर आया उसका फल दुख भोग रहा है, अभी बहुत पुण्य कर्म कर रहा है, यज्ञ दान तप पूजा पाठ बहुत कर रहा है, देकर पाप कर्म आया प्रारब्ध तो सुख हो गया दुख हो गया। अभी जितने कर्म लेकर के आए उसको भोगना ही पड़ेगा, अभी पुण्य कर्म करता है तो आगे भोगेगा। अभी जो भोग करता है इसी जन्म के कर्म फल नहीं, इसको स्पष्ट समझना। अभी जिसको सुख अथवा दुख मिलता है इसका कारण, सुख का कारण पुण्य कर्म, दुख का कारण पाप कर्म, जो लेकर के आया उसी का फल, अभी जो कर रहा है उसका फल भोग नहीं करता है। अभी यदि पुण्य कर्म करता है तो आगे भोग करेगा, और बहुत पुण्य कर्म लेकर के आया अभी पाप कर्म कर रहा है, अभी तो सुख भोग करता है किंतु अभी जो पाप कर्म कर रहा है इकट्ठी कर रहा है आगे दुख भोगने के लिए, इसलिए अभी जो कर्म करता है आगे भोग करेगा, अभी जो भोग कर रहा है लेकर के आया। ऐसे कोई सोचते हम इतने करते क्या मिला, ये नहीं कुछ मिलने का, जो कर रहे हैं वर्तमान जो करते हैं अभी तो वो पहले कर्म का फल होगा, अभी कर्म आगे रहेगा, और कर्म जो किया है वो कर्म समय पर फल देगा, और हमारी इच्छा से नहीं कि हम इस कर्म का फल अभी भोग ले, इस कर्म का फल नहीं भोगेंगे, ऐसा नहीं। कितने अनादिकाल से कर्म किया है, बहुत संचित कर्म है, कोई मरने के बाद आगे किस जन्म में जाएगा अपनी इच्छा से नहीं, आपको पूछा नहीं जाएगा आप किस जन्म में जाओगे, वहां जो कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए वो कर्म ही लेकर के आपको वहां पहुंचा देंगे। कोई कुछ बन जाएगा, पेड़ बन सकता है, कीड़ा बन सकता है, नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा, अपनी इच्छा से नहीं है। इसलिए कर्म को नित्य शब्द से कहा था, रितम शब्द से कह दिया, कर्म फल अवश्य भावी भोगना पड़ता है। रितम पिबंतो कर्म फल भोगते पान करते, पिबंत पीते पान करते, कर्म फल पान करने वाले द्विवचन है, द्विवचन कहन से यहाँ कहते देखो एक तो जीव भोग करता और एक ईश्वर, दो कर्म फल भोग करते हैं। ईश्वर कर्म फल भोग नहीं करता है, तो पिबंत तो द्विवचन दिया भोग करते हैं। कैसे? एक छत्री न्याय, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति का छता है, पूछते तुम्हारे भाई लोग को कहाँ गए, बोले देखो छत्री, दो छत्री वाले जा रहे हैं ना, दो जा रहे हैं ना छत्री, छत्री वाले जा रहे, दो दो अथवा पांच जा रहे, एक हाथ छता है, बोले देखो वो छत्री वाले जा रहे ना, वो हमारे गांव के, हमारे परिवार के, कौन है छत्री वाले, कितने व्यक्ति जा रहे, पांच व्यक्ति, सब के पास छत्री होगा, छत्र होगा तो छत्री वाले कहा जाएगा, सब के पास छत्र होना जरूरत नहीं, एक छत्ता पकड़ा है, देखो छत्ते वाले जा रहे, एक छत्ता वाले होने से सबको छत्रीण यान्ति कह देते हैं, एक छत्ता वाला है तो सबको पहचान करने के लिए देखो छत्रीण छत्र वाले। इसी प्रकार एक कर्म फल भोग करता है, ईश्वर कर्म फल भोग नहीं करता है, तो भी द्विवचन हो गया छत्री न्याय से। किसका रितम कर्म फल? सुकृत से, अपने सुकृत क्या है, स्वयं किया है, जो फल भोग करते आप सुख दुख, ये इसका कारण आपका कर्म और आपने किया है, दूसरे को दोष नहीं देना, कभी दूसरे को दोष नहीं देना, सुख दुख मिलता है तो आपने उपार्जन किया, अधिकार आपका है, भोगना पड़ेगा आपको, पुण्य हो पाप हो, और कोई निमित्त बन जाएगा, आपके कर्म फल आपको भोगना ही है, कोई निमित्त बन जाएगा, आपके कर्म के कारण निमित्त बनेगा। यदि कोई दोष देता है, धक्का देकर गिराता है, वो पाप कर्म करता है, वो फल भोग करेगा, किन्तु आपको जो गिरना हुआ आपके पाप कर्म का फल, कभी चलते समय अपने आप पैर में मोच आ गया, अपने आप फिसल कर गिर पड़ता है, गिरते हैं नहीं कभी, कितने लोग गिर जाते हैं, किसको दोष देना, अपना कर्म मानना पड़ेगा, ऐसे बहुत होता है, कितने गिर पड़ते हैं तो खाली ऐसे गिर पड़े, फिर उसमें डॉक्टर के पास हड्डी में फ्रैक्चर, ऑपरेशन करो, कितने क्या क्या हो जाता है, अपना फिसल करके, तो अपने कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए उसको कहा सुकृतस्य, स्वयं कृतम, ये होता है सुकृत, इसलिए कहते स्वयं जो करते ना ठीक होता है, दूसरे द्वारा कराएंगे तो थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, जो कोई कार्य करते ना स्वयं करते ठीक होगा, अन्य करेगा तो उसमें संतोष नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो कह रहे तो कोई कोई भोजन बनाते खिलाते तो कोई अन्य लोगों के बनाने के लिए, फिर स्वयं खड़े होकर थोड़ा देखते हैं ठीक बनाया नहीं बनाया, जो कोई चीज होता है तो अपने करते तो होता है ठीक होता है संतोष होता है, इसलिए कहते सुकृतस्य, अपने क्या हुआ कर्म फल भोग करते पीवंतो, गुहाम प्रविष्टो परमे पराधे, गुबुद्धि रूप गुहा में स्थित परम हे पराध, परस्य अर्धम परार्धम, परे ब्रह्म, ब्रह्म का स्थान, अर्धैत स्थान, परस्य अर्धम परार्धम, परे ब्रह्म का स्थान है हृदयाकाश, हृदयाकाश में स्थित है परम स्थान, परम है अन्य बाह्य आकाश की अपेक्षा ये श्रेष्ठ हृदयाकाश, परमे ब्रह्म का स्थान है। छाया तपो, छाया और आतप दोनों अत्यंत विलक्षण है, छाया और सूर्य किरण प्रकाश जैसे दोनों विलक्षण है, इस प्रकार परस्पर विलक्षण दो है, ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्म ज्ञान लोग उसको कहते हैं। और ये च पंचाग्नय, पंचाग्नि उपासना करने वाले गृह तो वो भी कहते हैं, एक पंचाग्नि विद्या उपासना है, सांद्योग्य में आएगा उपासना, पंचाग्नि का अर्थ नहीं अग्निचार तो जलाकर बैठना, वो अलग है, पंचाग्नि है अनग्नि में अग्नि चिंतन, अशोभाव पुरुष गौतम अग्नि, स्वर्ग लोगों को अग्नि ऐसी चिंतन करना उपासना है, तो जो पंचाग्नि उपासना करने वाले गृह तो वो भी इसे कर्म करने वाले भी कहते हैं, ये छाया तप के समान दो ही है, इसमें वृद्धि गुहा में स्थित है, ये जो त्रिनाचिकेता तीन बार नचिकेता अग्निचयन जिन्होंने किया वो भी ऐसा कहते हैं, कर्म करने वाले भी, पंचाग्नि का उपासना करने वाले, कर्म करने वाले, ब्रह्म ज्ञान लोग भी कहते हैं, प्रामाणिक है, बुद्धि को गुहा में ऐसे दो है, एक कर्म फल भोग करता है, एक देखता है केवल भोग नहीं करता है। यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तिथिर्षताम पारम नचिकेतम शके मई, यह सेतु, सेतु के समान ईजानानाम यजमान कर्मी को, कर्मी का सेतु के समान, जैसे बंध सेतु बांधते इस पार से उस पर जाने के लिए, कर्म करने वाले को दुख संसार से पार कराने के लिए सेतु के समान पर ब्रह्म है, ब्रह्म यत् परम, यत् परम ब्रह्म सेतु के समान, अभयम अभय पद है, भय शून्य तो संसार से के पार तितिर सताम, जो उसके पार होना चाहते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी का परमाश्रय ब्रह्म स्वरूप है। तच नाचिकेतम शक्यमयी, परापर ब्रह्म को हम जान सकते हैं, ये ब्रह्म कहा दिया उसको हम जान सकते हैं। परापर ब्रह्म कहा कर्म करने वाले ब्रह्मज्ञानी दोनों के लिए, ब्रह्मज्ञानी तो शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कर्म करने वाले कार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब इसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए उपाय बताते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये परमात्मा है, उपाधि के कारण संसारी होता है, अज्ञान के कारण संसार प्राप्त करता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है। ये अभी दोनों के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये साधन हो गया रथ की कल्पना करते। ये शरीर ही रथ है, शरीरम रथम एव तु, शरीर हो गया रथ, रथी हो गया रथ स्वामी, जीव रथी रथ वाला रथी, स्वयं जीव हो गया संसारी रथी है, रथ है शरीर। ये शरीर यदि सारथी ठीक चलाए यह सन्मार्ग में ले सकता है, नहीं तो गिरा सकता है। इस शरीर को अपने मिला है साधना, आप रथिए इसको ठीक रास्ता पर चलना अपना कर्तव्य है। और सारथी बुद्धि तो सारथी विधि, रथ चलाने के सारथी होता है, सारथी ठीक चलाता है तो रथ तो चलेगा, खींचने वाले तो घोड़े अलग है, एक सारथी उनको लेता है। बुद्धि तो सारथी विधि, सारथी होगी बुद्धि, और लेके बुद्धि सारथी क्या करता है, घोड़े को नियमन करने के लिए लगाम पकड़ के रखा है, वो लगाम मन प्रग्रह में बचा, मन हो गया प्रग्रह, लगाम के स्थान पर हो गया, रस्सी से बांध के रखता है, मन से उसको खींच करके इन घोड़े को रोकता है, छोड़ता है सारथी। और घोड़ा कौन अभी नहीं बता, घोड़ा आगे कहते हैं, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर मनीषिण। इंद्रियाणि हयान आहु, घोड़े कौन हो गए, इंद्रिया,